छेदीलाल घर जोड़े, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कमर तोड़े।
अभी तक छेदीलाल शादी के खर्चे से उभर नहीं पाए थे कि तभी कार सेल्समैन ने फोन करके आग में घी डालने का काम कर दिया। सेल्समैन की बात सुनते ही छेदीलाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और फिर छेदीलाल ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा,
राजेश्वर, अरे कहाँ है बारा?
छेदीलाल की ऊंची आवाज सुनकर राजेश्वर के साथ घर के सारे लोग ड्राइंग रूम में आ गए। फिर बड़ी धीमी आवाज में राजेश्वर ने कहा,
क्या हुआ बाबूजी?
मेरे पीठ पीछे महाभारत रच गए तुम बाप बेटे मिलके और मुझे भनक तक नहीं लग रही थी।
कौन सी महाभारत, कैसी बात कर रहे हैं आप बाबूजी? सीधे सीधे बोलिए, पहेली मत बुझाइए।
ब्याह का आधा खर्चा हमसे कराए और अब ये नई कार खरीदने का पैसा कहां से आ गया?
बाबूजी, ये कार 6 महीने पहले बुक किया गया था, अब नंबर आया है, तब तक शादी नहीं तय हुई थी।
तुम मुझको बताया क्यों नहीं?
मुझे लगा जब हमारा नंबर आएगा तब बता देंगे।
जाओ कैंसिल करके आओ, शादी में पहले हमारा खर्चा बजट के बाहर चला गया है, ऊपर से एक कार का खर्चा मैं नहीं संभाल सकता।
मैं कैंसिल करने वाला था बाबूजी, लेकिन कुंदन ने कहा कि उसके पास पैसे हैं।
उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए?
वो रिया के पापा ने उसके नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जो मैच्योर हो गया है, उसी से 5 लाख मिले हैं।
तो तुम उस पैसे से कार खरीद रहे हो? हैं? पागल हो गए क्या तुम लोग जो उसके जमा पैसे को डेप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीद के बर्बाद करोगे? मुझे नहीं लगता कि रिया की सेविंग के पैसे से तुम्हें कार खरीदनी चाहिए। अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो क्या कार बेचकर पैसे लाओगे?
बाबूजी आप कुछ भी बोलते हैं, आपने तो अपने खटारा स्कूटर पे जिंदगी काट दी और आज जब मेरा बेटा कार खरीद रहा है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। और अगर कभी बुरी हालत भी हुई ना तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, आप परेशान मत होइए।
अरे मैं तुम्हारे कार खरीदने के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा बस इतना कहना है कि अगर खरीदना है तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसके बाद खरीद लो।
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, मैं और कुंदन मिलके मैनेज कर लेंगे।
अपने पिता राजेश्वर की बातों में हाँ मिलाते हुए कुंदन बोल पड़ा,
हाँ और क्या दादाजी, रिया का पैसा हमारा पैसा ही है।
अरे बेड़ा गर्क हो, बाप डाल डाल तो बेटा पात पात। अरे स्कूटर से हमारा काम चल रहा है ना, तो नई कार की क्या जरूरत है?
जरूरत है दादाजी, इसीलिए ले रहे हैं। कल रास्ते में आपका खटारा स्कूटर बंद हो गया था जिसकी वजह से मीटिंग में लेट पहुंचे हम।
मैं तुम लोगों से बहस नहीं कर सकता, जो मन में आए वो करो, जाओ।
बहस को शांत करने के लिए सरिता ने छेदीलाल को एक पानी का ग्लास देते हुए कहा,
बाबूजी आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, पानी पीजिए।
बेटा कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, हर साल इसकी कीमत कम होती जाएगी और अभी तुम्हारी कोई अर्निंग भी नहीं है कि तुम कार अफोर्ड कर सको।
दादाजी ये डेप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है?
डेप्रिशिएटिंग एसेट वो एसेट होता है जो जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसकी कीमत कम होती चली जाती है, जैसे गाड़ी, मशीन, घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये सब तमाम चीजें हैं। बेटा कुंदन अगर तुम्हें खरीदना है तो एप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदो जिसकी कीमत आने वाले समय में बढ़े ना कि घटे, जैसे कोई जमीन, घर, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें तुम्हारा पैसा बढ़ता रहे। कम से कम तुम अपने पिता की गलती तो मत दोहराओ।
आपको तो बस केवल मेरी गलती गिनाने का मौका चाहिए।
बेटा कुंदन तुम्हारे बाप को तो मैं आज तक नहीं समझा सका, लेकिन तुम मेरी बात समझो, इतना बड़ा अमाउंट अचानक खर्च कर देना बिना किसी कारण के ये अच्छी बात नहीं है। कार खरीदने से पहले 2 बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली, क्या कार तुम्हारी जरूरत है? जैसे घर में कोई बीमार हो जिसको बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता हो, या कार खरीदने से तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा हो, या फिर केवल शौक के लिए खरीद रहे हो।
दादाजी हर रोज इन्वेस्टर से मीटिंग करनी होती है, उस पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेंगे तभी तो वो हमारे आइडिया पर पैसा लगाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं बात को।
हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए कार इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर खरीदने का प्लान कर लिया है तो कोई सेकंड हैंड कार खरीद लो।
अरे सेकंड हैंड क्यों? देखिए आपने अपनी जिंदगी सेकंड हैंड स्कूटर पर काट दी, लेकिन मैं आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे नई कार ही खरीदनी है।
राजेश्वर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद सन्नाटे को तोड़ने के लिए रिया ने कहा,
आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
रुको बेटे, राजेश्वर तुम्हारे कार खरीदने से मुझे कोई एतराज नहीं है, बस थोड़ा प्लानिंग करके खरीदो। ये कार का अमाउंट कितना है?
5 लाख है दादाजी, पर डाउन पेमेंट केवल 20% यानी 1 लाख रुपए ही करनी है।
तो सुनो, एक काम करो, एक सेकंड हैंड कार खरीद लो जिसकी कीमत नई कार के मुकाबले आधी हो, यानी लगभग 2 लाख। जो 1 लाख नए कार के लिए डाउन पेमेंट दे रहे थे ना, उसको देने के बाद 1 लाख की ईएमआई करा लो, वो भी 2 साल के लिए, और बाकी बचे हुए 3 लाख को रिया के नाम से म्यूचुअल फंड में डाल दो, जहां कम से कम 15-20% का रिटर्न आएगा, जिससे तुम बड़े आराम से ईएमआई भर सकते हो, और हाँ, जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हो।
इतना कहकर छेदीलाल अपने कमरे में चले गए और उनके जाने के बाद सब एक एक करके जाने लगे। छेदीलाल की बात किसी को समझ में आई हो या नहीं, लेकिन रिया को अच्छे से समझ आ गई। रिया ने कुछ सोचते हुए कुंदन से कहा,
कुंदन, दादाजी सही तो कह रहे थे, अभी तो तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। यार, मुझे नहीं लगता इस वक्त नई कार खरीदना सही डिसीजन होगा।
अरे प्लीज रिया, तुम शुरू मत हो जाओ अब यार।
अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो।
हाँ ठीक है, बोलो।
नई कार कितने की है?
5 लाख डाउन पेमेंट लेके।
इंटरेस्ट मिला के कितने की पड़ेगी?
9400 की ईएमआई है 5 साल के लिए, तो 4 लाख पर 14% के हिसाब से कितना होता है? 5,58,000।
मतलब गाड़ी हमें टोटल 6,58,000 की पड़ी।
हाँ।
जिसमें 1,58,000 केवल ब्याज भरना होगा।
ठीक है।
और अगर 5 साल के बाद गाड़ी बेचेंगे तो 50% के कम रेट पे बिकेगी, मतलब ये कि 2.5 लाख के आसपास, और 4 लाख का नुकसान। इससे अच्छा तो ये है ना कि सेकेंड हैंड कार खरीद लेते हैं, जिसकी ईएमआई भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम 4 लाख के नुकसान से भी बच जाएंगे। बाकी के पैसे को हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा जैसा दादाजी कह रहे थे।
हाँ रिया, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या पापा सेकेंड हैंड कार के लिए मानेंगे?
एक बार बात करके तो देखो, शायद मान जाए।
कुंदन अपने पिता राजेश्वर के पास पहुँचता है।
पापा, दादाजी जो कह रहे थे ना, मैंने उस पर बहुत सोचा। एक्चुअली हमें सेकेंड हैंड कार ही खरीदनी चाहिए।
लेकिन क्यों? मैं समझा नहीं बेटा। अरे अब तो हमारे पास पैसे भी हैं।
नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ आपको पापा, समझाता हूँ।
कुंदन ने फाइनेंशियल प्लानिंग अपने पिता राजेश्वर को समझाकर सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए मना लिया। इस तरह से पहली बार छेदीलाल को अपने घर में जीत मिली। छोटी छोटी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट आपका कल सुरक्षित कर सकती है। ऐसी तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी जानकारी के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ जानकारी लिसनर्स से साझा करना चाहते हैं तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।